الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بڑی کمال کی حدیث ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا فرغ احدکم من طہورہ, جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو فرمایا فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ, تو وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ ثم لیصلی علیہ, پھر مجھ پر درود شریف پڑھے فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ, تو جب یہ درود پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تو وضو کرنے کے بعد پڑھنا کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ, اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے. آسیوں جرم کی دوا ہے درود, کیا دوا, عین کیمیا ہے درود. ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ, کرتا معدوم اور فنا ہے درود. چھوڑیو مت درود کو کافی, راہ جنت کا رہنما ہے درود. ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں, محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب بیان کرنے آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتوں کو ہم سمجھیں, قرآن کی آیتوں کو ڈسکرائب بھی کریں اور ان سے کچھ میسج حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم قرآن مجید کے پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 1 سے 3 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدوں و رحمت للمحسنین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں, نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں. اب ان آیتوں کی ہم ذرا تھوڑی سی تفصیل سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا شان نزول کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ آیتیں کس سینیریو میں کس وجہ سے نازل ہوئیں. اب جناب شان نزول یہ ہے کہ غیر مسلم شخص تھا جس کا نام تھا نظر بن حارث, مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا. ایک مرتبہ تجارت کے لیے ہیرا, یہ کوفہ سے 3 میل کی دوری پر ایک شہر ہے, وہاں وہ گیا اور واپسی میں کہانیوں کی کتابیں لے آیا. اور معاذ اللہ, اب وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو کہانیاں سناتا جاتا اور یہ کہتا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں قوم عاد اور ثمود کی کہانیاں سناتے ہیں, میں بھی تمہیں رستم اور اسفندیار وغیرہ کی کہانیاں سناتا ہوں. یعنی معاذ اللہ اپنے قصے کہانیوں کو قرآن کے برابر ٹھہرا دیا کہ قرآن بھی کہانیاں ہیں, میں بھی کہانی سنا رہا ہوں. تو اس بدبخت کی مذمت میں, اس کے رد میں سورہ لقمان کی آیتیں نازل ہوئیں. اب اللہ نے کیا فرمایا, ایک جگہ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ترجمہ کنز العرفان, اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں, ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یعنی نظر بن حارث جو کہانیوں کی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے اس پہ خرابیاں ہیں. نمبر ایک, پہلی خرابی تو یہ کہ یہ لہو الحدیث یعنی بے مقصد کہانیاں اور کھیل کی باتیں ہیں. اور نمبر دو, دوسری خرابی یہ کہ ان کو پڑھنے سننے والے اللہ پاک کے رستے سے اور نیکی سے دور ہو جاتے ہیں. اور اللہ کریم نے جو قرآن کی شان بیان فرمائی الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم, الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. یعنی قرآن کریم کی پہلی شان تو یہ ہے کہ نظر بن حارث کہانیوں کی کتاب لایا ہے, وہ لہو الحدیث ہیں, فضولیات ہیں. قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ ہر ہر لفظ حکمت بھرا ہے, ہر ہر لفظ میں خزانے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا ہدن یعنی ہدایت. دوسری شان یہ ہے کہ قرآن کریم صرف کتاب حکمت نہیں بلکہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ نظر بن حارث کی ان کہانیوں کو پڑھ کر بندہ بھٹک جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرے، چاہے سمجھ کر کرتا ہو یا بغیر سمجھ کے کرے، عربی ہو یا عجمی ہو، عالم ہو یا بے پڑا ہو، بس قرآن کریم کھولے، ادب کے ساتھ اس کے الفاظ مبارک اپنی زبان سے ادا کرتا جائے، اس کے ان الفاظ کی بھی تاثیر یہ ہے کہ وہ دل میں ہدایتیں اتار دیتا ہے۔ سمجھ نہ بھی آئے تو تلاوت قرآن امپیکٹ رکھتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، لیکن کوئی بہترین قاری تلاوت کرے، کوئی بہترین قاری تراویح میں پڑھ رہا ہو تو قرآن سنتے جائیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اٹ مینس قرآن دل پر براہ راست اثر کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا ورحمت للمحسنین، اور رحمت ہیں نیکوں کے لیے۔ تو قرآن کریم کی تیسری شان کیا ہے؟ جو اول تاخر رحمت ہی رحمت ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ایک ایک حرف کو تلاوت کرنے پر دس دس نیکیاں ملتی ہوں، یہ صرف قرآن پاک کی شان ہے۔ بندہ جب قرآن پاک کو کھول بیٹھتا ہے نا، صرف قرآن کو دیکھنا شروع کرتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، چھما چھم رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ہمیں بہت اہم بات قرآن سے جو میسج لینا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کتاب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ فیس بک پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پوسٹیں ہماری نظروں سے آ رہی ہوتی ہیں، گھنٹوں ہمارا کچھ نہ کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس مقام پر نظر بن حارث کے ان باتوں اور قرآن کریم کا تقابل کر کے جو ہمیں میسج دیا گیا نا، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، کچھ بھی پڑھنا ہو اس میں پہلی بات یہ چیک کرنی ہے کہ پڑھ کر ہدایت ملے تو پڑھ لو، فضولیات پر مبنی ہے تو بچ جاؤ۔ جو پڑھ رہے ہو اس سے حکمت اور نصیحت ملتی ہے تو پڑھ لو، فضولیات ہیں، گمراہی آتی ہے، نیکی سے دور ہو جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ۔ اگر اسے پڑھ کر ثواب ملنے کی امید ہے تو پڑھ لو، اور ثواب ملنے کی امید نہیں بلکہ گناہ کی امید ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو اب یہ کلیہ سامنے رکھ لیں کہ کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو قرآن نے اپنی شان بھی بیان کر دی، اور رہتی دنیا کو پڑھنا سننا دیکھنا کیا ہے اور کیا نہیں دیکھنا، اس کا فارمولا بھی بتا دیا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن کتنا امپیکٹ فل ہے اور اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک سورت کس قدر درس رکھتی ہے۔ کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک صحابی سے کہ یہ نیا مسلمان ہوا ہے، نئے شخص آئے، ان کو قرآن سکھاؤ۔ صحابی رسول انہیں لے کر بیٹھ گئے اور قرآن سکھانا شروع کیا۔ ایک اور بات سمجھ آئی کہ قرآن سیکھنا سکھانا یہ دربار رسالت میں موجود صحابہ کا طریقہ تھا۔ ایک حدیث پاک بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں یا قرآن خود سیکھ لیا ہے؟ اگر سیکھ لیا ہے تو کیا دوسروں کو سکھاتے ہیں؟ ہماری بہت بڑی تعداد ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، پراپر پڑھنا نہیں آتا۔ بہرحال صحابی رسول نے قرآن سکھانا شروع کیا، سورہ زلزال سکھائی، ساتویں آیت سکھائی، تو کہتے ہیں بس مجھے اب کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ تو صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے، کہتے ہیں حضور یہ تو سات آیتیں سیکھ کر کہہ رہے ہیں مجھے کافی ہے، ہیں اور پڑھی نہیں رہے آگے، کہتے ہیں بس سات آیتیں کافی ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے۔ یعنی سات آیتوں میں اتنا کمال، سکھانے والے کون تھے؟ صحابی رسول تھے نا، کس انداز سے سکھایا ہوگا، کیسا دل میں اتارا ہوگا۔ سچی بات تو یہ کہ بعض اوقات قرآن کی ایک آیت اگر صحیح سمجھ آ جائے اور بندہ اس پر عمل کر لے، وہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سات آیتیں سیکھ لی، اس کو فقاہت مل گئی، اس کو دین کی سمجھ مل گئی، تو اب پتا چلا کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے کتاب ہدایت، کہ اس طرح امپیکٹ کریٹ کرتی ہے اور بندہ دل سے پڑھے سمجھ لے تو اس کی زندگی سنور جایا کرتی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہیں انہوں نے وفات پائی۔ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہوئے تھے، ان قیدیوں کی بات چیت کرنے کے لیے میں مدینہ منورہ آیا تھا، یعنی غیر مسلموں کی طرف سے نیگوشیشن کے لیے۔ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا، جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، مسلمان مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے تھے، اور پیارے آقا نے نماز کے اندر جو آیت تلاوت کی، وہ نماز کی جو تلاوت تھی وہ مسجد کے باہر بھی آواز آ رہی تھی، اور پیارے آقا سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب میں حیران ہو گیا کہ آواز کیسی، है, कुरान पढ़ने वाला कौन? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जिन पर कुरान नाजिल हुआ है, और कलाम किसका? अल्लाह का कलाम। कैसी तासीर होगी? कहते हैं मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया और अब मेरे कानों में नबी पाक की प्यारी मीठी आवाज़ और अल्लाह का कलाम जाने लगा, और नबी पाक ने यह आयात पढ़ी, इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ, बेशक तेरे रब का अजाब ज़रूर वाक़ होने वाला है, उसे कोई टालने वाला नहीं। कहते इन आयात को सुना तो मेरा दिल ऐसे हो गया जैसे अभी फट जाएगा, मुझे यूं लगा था कि मैं यहां से कदम भी नहीं उठा सकूंगा, इससे पहले ही मुझ पर अजाब बरस जाएगा। मैंने अल्लाह पाक के अजाब से डर कर उसी वक्त तौबा की और ईमान कबूल कर लिया। आए थे गैर मुस्लिमों की तरफ से नेगोशिएशन करने, मगर कुरान ने दिल पर ऐसा इंपैक्ट किया, इतना अंडरस्टैंड किया कुरान को कि फौरन ईमान कबूल कर लिया। तो ये है कुरान। अल्लाह पाक हमें कुरान उसकी हकीकी रूह के मुताबिक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। कुरान गुनाहगारों को कैसे हिदायत देता है? एक बार हज़रत अबू हाशिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा बसरा कश्ती में जाने के लिए सवार हुआ, इस कश्ती में एक मर्द भी था, उसके साथ कनीज़ भी थी। आगे बढ़े तो मर्द ने अपनी कनीज़ से कहा ज़रा शराब पिलाओ, उसने शराब पिलाई। कनीज़ को कहा कुछ गाना भी सुनाओ, हालांकि वो बुजुर्ग साथ बैठे थे मगर वो अपनी रंग रलियों में मसरूफ था। कहता गाना सुनाओ, उसने गाना भी शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो शख्स जो है वो हज़रत अबू हाशिम से कहता है, इस गाने जैसा तुम्हारे पास भी कुछ है, तुम भी कुछ सुना सकते हो? अब उनको मौका मिला, उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अब सुने कुरान की कौन सी आयतें पढ़ी? देखिए कुरान की कुछ सूरतें तो ऐसी हैं जो कमाल है ना, बंदा ऐसा लगता है उसका ऐसा तरन्नुम है, ऐसी लय है, ऐसा अंदाज है कि बंदा रहमत के दरिया में तैरना शुरू हो जाता है। उन्होंने क्या पढ़ना शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इदश्शम्सु कुव्विरत व इदन्नुजूमुन कदरत व इदल जिबालु सुय्यिरत। 30वां पारा है, सूरह तकवीर है, कयामत की मंजर कशी कुरान कर रहा है। तर्जमा क्या बनता है? जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, जब तारे झड़ पड़ेंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। इन आयात को सुनकर वो शख्स रोने लगा जो थोड़ी देर पहले शराब पी रहा था, गाने सुन रहा था। जब कहते हैं इस आयत पर मैं पहुंचा, व इदस सुहुफ नुशिरत, और जब नामाए अमाल खोले जाएंगे, रोते रोते वो शख्स अपनी कनीज से कहता है, मैं अल्लाह के लिए तुझे आज़ाद करता हूं, इस शराब को पानी में बहा दो। और अब कहते हैं वो अबू हाशिम रहमतुल्लाहि तआला से पूछता है, क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है? मैं तो बड़ा गुनाहगार, मैं शराबी, मैं बुरे काम करने वाला, कुरान से मुझे हिदायत मिल रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वालों को कुरान भी कैसा याद था, इसके इस सवाल का जवाब भी उन्होंने कुरान से दिया। फरमाते इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। हाय हाय, ये सुनकर उस बंदे ने तौबा कर ली कि अल्लाह का पैगाम है कि अल्लाह तौबा करने वालों को कबूल फरमाता है। तो यूं कुरान जिंदगियां बदलता है, यूं कुरान हिदायत देता है, यूं कुरान दिलों की दुनिया बदल देता है। मगर बात यह है कि कुरान से मोहब्बत भी तो होना। कुरान पता है कयामत के दिन कैसे काम आएगा? बहुत सारी चीज़ों से दोस्ती लगाई हुई है लोगों ने। पूछो क्या हॉबी है? मेरी हॉबी स्पोर्ट्स है, मेरी हॉबी मोबाइल पर गेम खेलना है, मेरी हॉबी क्या है जनाब, मैं कंप्यूटर पर टाइम गुजारता हूँ, मेरी हॉबी फता फला फला, पता नहीं टॉमी जॉनी, पता नहीं किस किस की किताबें पढ़ते रहते हैं। अरे मुसलमान की पहली हॉबी तो कुरान होना चाहिए ना, पहली मसरूफियत तो कुरान होनी चाहिए। सुनो कुरान क्या काम देगा। अल्लाह करीम के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा दिन और रात में कुरान करीम की तिलावत करते हैं, ऐसी रूटीन बनाए कि काम पर जाने से पहले कुछ कुरान पढ़ के जाएं, घर आएं तो सोने से पहले कुछ कुरान पढ़ लें, अल्लाह करे सुबह सूरह यासीन पढ़ के जाएं, रात सूरह मुल्क पढ़ लिया करें। सुनिए नबी पाक फरमाते, जो बंदा दिन और रात में कुरान पढ़ता है और कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम जानता है, अल्लाह पाक फरिश्तों को उसका रफीक यानी उसका साथी बना देता है। जब कयामत का दिन होगा, बंदे के लिए अल्लाह की बारगाह में दलाइल देगा, कुरान कहेगा, रब्बे करीम, हर शख्स दुनिया में अपने काम की उजरत लेता था, जो भी काम करते हैं उसकी फीस लेते हैं ना, कुरान कहेगा, या अल्लाह, हर शख्स दुनिया में अपने काम की उजरत लेता था, मगर फलां शख्स दिन और रात में मुझे पढ़ता था, मेरी तिलावत करता था, मेरे हलाल को हलाल और हराम को हराम जानता था, ए अल्लाह आज इसको अजर अता फरमा, यानी आज इसकी उजरत अता फरमा। कुरान करीम की अर्ज पर अल्लाह करीम उस बंदे को ताजे शाही और करामत का लिबास पहनाएगा। अब अल्लाह कुरान से फरमाएगा, हल रदीता, ए कुरान क्या तू राजी है? जरा गौर कीजिए, बंदे को इज्जत का ताज और करामत का लिबास पहना के बंदे से नहीं पूछेगा, अल्लाह कुरान से सवाल करेगा, ए कुरान तू राजी है? तो कुरान कहेगा, या रब इससे भी ज्यादा अफजल अजर अता फरमा, अब इस बंदे को बादशाहत और सुभान अल्लाह जन्नत की नेमतें अता की जाएंगी, यानी अता किया जाता रहेगा। हदीस का खुलासा है कि कुरान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फिर कुरान से सवाल फरमाएगा कि ऐ कुरान क्या तू राजी है? अल्लाह अकबर, ज़रा गौर कीजिए। और फिर एक वक्त आएगा कि कुरान कहेगा या अल्लाह मैं राजी हूँ। अब बताएं दोस्ती किससे करनी चाहिए, साथ किसका होना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ ओपन करते हैं, रोज़ सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, रोज़ ऑनलाइन होते हैं, कुरान ऑनलाइन नहीं करते। हमारे असलाफ रोज़ाना, कई कई बुजुर्ग तो वो हैं जो तीन तीन दिन में पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे, हैं कुरान जो है तीन तीन दिन में पढ़ लिया करते, लेकिन हम आज हम हैं कि कुरान पूरा पूरा साल गुजर जाता है अब नहीं खोलते। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम कुरान से दोस्ती करें। और कुरान कैसे कैसे मैसेज देता है और तौबा कैसे कबूल होती है, एक बड़ा प्यारा वाकया है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप कहते हैं कि एक बार मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इशा पढ़कर बाहर निकला तो मैंने खातून को देखा, पूरी पर्दे के अंदर मौजूद थी। उन्होंने मुझे कहा कि ऐ अबू हुरैरा, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? आपने फरमाया बताओ क्या गुनाह किया है। जब उसने गुनाह बताया तो वो बड़ा गुनाह था, तो आपने फरमाया कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी तुम तौबा की उम्मीद रखती हो? अल्लाह पाक की कसम तेरे लिए कोई तौबा नहीं, तू हलाक हो गई। वो औरत इतना शर्मिंदा हुई, इतनी नादिम हुई, कपकपी तारी हो गई और वो औरत गिरकर बेहोश हो गई। हज़रत अबू हुरैरा को ख्याल आया, क्योंकि इस्लाम के इब्तदाई दिन थे, रोज़ नबी पाक से सारे सहाबा सीख रहे थे, अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग हो रही थी। कहते मैंने नबी पाक से तो पूछा ही नहीं, मशवरा ही नहीं किया, मैंने औरत को जवाब दे दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, प्यारे आका को बताया, हुज़ूर ऐसा ऐसा हुआ, एक औरत मिली और उसने मुझे कहा मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मैंने तो कह दिया तेरी तौबा कबूल नहीं। जब नबी पाक ने यह सुना तो प्यारे आका ने फरमाया इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, ए अबू हुरैरा तू खुद भी हलाक हुआ और इस औरत को भी हलाक कर डाला, क्या तुम्हें अल्लाह पाक का ये फरमान याद नहीं? फिर आपने कुरान की आयत तिलावत की, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। तर्जमा कंजुल इरफान, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी ये कमाल देखें अल्लाह का, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। आप किसी को तंग करें, तकलीफ पहुंचाएं, आप माफ़ी मांग लें, बंदा माफ़ कर दे बड़ी बात है, हम बहुत खुश होते हैं यार इसने माफ़ कर दिया। मगर अल्लाह करीम जब तौबा कबूल फरमाता है ना, तो अल्लाह सिर्फ माफ़ नहीं फरमाता, अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। गुनाह माफ़ कर दे उसकी बड़ी मेहरबानी, फरमाए नहीं, अल्लाह जब राज़ी हो जाए तो गुनाहों को ही नेकियों से बदल देता है। बिला तमसील समझाने के लिए, किसी बंदे के आपने लाख रुपए देने हो और आप पैसे ना दे रहे हो और थोड़े अरसे बाद आप जाएं कि यार माफ़ कर दो, बड़ी ताखीर हो गई, मैंने बहुत तंग किया आपको, आपका कर्ज़ा देना है मगर लेट हो गया हूँ, और अगला कहे कर्ज़ा भी माफ़ किया बल्कि एक लाख रुपये और तुम्हें देता हूँ, बंदा कहे यार ताखीर माफ़ कर देता बड़ी बात थी, पैसे तो ले लेता, पैसे भी नहीं लिए डबल कर दिए। अल्लाह की शान करीमी देखें कि बंदा सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ कर दे तो सिर्फ माफ़ नहीं फरमाता, वो अल्लाह करीम फिर गुनाहों को भी नेकियों से बदल देता है। अब हज़रत अबू हुरैरा ने जब ये सुना तो आप तो हैरान हो गए कि ये मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा गलत मसला बता दिया। आप मदीने पाक में गए, गलियों में ऐलान करने लगे, वो औरत कहाँ है जिसने कल रात मुझसे मसला पूछा था? आप टेंशन में आ गए कि मैंने गलत मसला बयान कर दिया। पूरा दिन मदीने की गलियों में घूमते रहे और फिर उसी रात को दोबारा वो औरत मिली तो आपने फरमाया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत मसला बताया, मसला तो यह है कि तुम्हारी भी तौबा कबूल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, वो औरत इतना खुश हुई, कहती ऐ अबू हुरैरा मेरे पास एक बाग है, वो पूरा बाग मैं अल्लाह की राह में इस खुशी में सदका करती हूँ। मगर इस कुरान पाक की आयत और इस वाक्य से फिर कुछ सीखने को मिला, एक तो मेरा रब कितना करीम है, सच्ची तौबा करे तो वो तौबा कबूल फरमाता, कुरान पढ़े तो समझेंगे ना, और सेकेंडली कि गलत मसला किसी को नहीं बताना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मिस्टेक हुई तो आप फिर मदीने की गलियों में पूरा दिन घूमते रहे, उस औरत को तलाश किया कि वो गलती मेरी ख़त्म हो जाए। मगर आज जिसके मुंह में जो आता है कुरान की तफसीर बयान कर रहा है, हदीस लोग बातों भी कह रहे थे अल्लाह कुरान में फरमाता, उससे पूछो कहाँ फरमाता ये नहीं पता, तुम्हें नहीं पता अल्लाह क्या कहता है? अरे भाई अल्लाह क्या कहता है ये कहने के लिए आपके पास दलील होनी चाहिए, भाई हदीस में ही आता है। आपने कौन सी हदीस पढ़ी है? वो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था। भाई सोशल मीडिया की हर बात हदीस हो जाएगी, हर बात कुरान हो जाएगी, हर चीज़ को फॉरवर्ड कर देंगे, हर पोस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे, क्या पता वो गलत हो, और बाकायदा प्लानिंग के साथ कुरान और हदीस की गलत इंटरप्रिटेशंस सोशल मीडिया पे फ्लोट की जा रही हैं कि आपको नहीं पता कादियानी लॉबी कैसे काम कर रही है, माद अल्लाह कुरान में वो तहरीफ कर रहे हैं और हमें तो आता जाता कुछ नहीं, जो पोस्ट आई आगे बढ़ा दी, जो पोस्ट आई आगे बढ़ा दी। आप याद रखिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अल्लाह पर झूठ बांधने का मतलब क्या है कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ये फरमाता है, अल्लाह के रसूल ये फरमाते, तो अल्लाह रसूल पर झूठ बांधना हुआ ना, नहीं फरमाया उन्होंने। क्या आपको पूरा कुरान याद है? आपको पूरी हदीसें याद हैं? हर पोस्ट को फॉरवर्ड करना है, कितनी मनगढ़ंत हदीसें, कितनी मनगढ़ंत रिवायतें सोशल मीडिया पे फ्लोट कर दी जाती हैं, मुसलमान उसके साथ चल रहे होते हैं। ऐसा ना करें, आपको नहीं कन्फर्म आप मसला आगे ना बताएं, क्योंकि मसला गलत बताया और वो जब तक अमल करता रहा उसका अजाब किस पर आएगा। तो हमें बेस्ट तरीका तो ये कि अगर कोई दीनी पोस्ट फॉरवर्ड करनी है, बल्कि खुद भी अमल करना है, किसी आलिम दीन से पूछ लें। अब आप कहें यार हर पोस्ट मैं तो रोज की पता नहीं सैकड़ों पोस्टें चलाता रहता हूं, तो वाजिब तो नहीं आप पर हर पोस्ट को लाइक शेयर करते रहना। और अगर आपका फिर भी शौक है तो मेरा मशवरा है कि आप dawatislami.net ये हमारी वेबसाइट है जहां रोज की ऑथेंटिकेट उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम से अप्रूव्ड पोस्ट हदीसें कुरान की आयतें आ रही होती हैं, वहां से लें और शेयर कर दें, सवाब भी मिलेगा और आप मुतमईन भी होंगे कि जनाब ये ऑथेंटिकेट है। वरना ऐसा ना हो कि गलत मसले आगे फॉरवर्ड करने की वजह से हम भी गुनाहगार हों। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी एहतियात भी नसीब फरमाए। इंसान है ना हम भी, जैसे मैं बैठा हूँ बयान कर रहा हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर किसी बयान करने वाले से भी गलती हो जाए और उसे पता चल जाए कि भाई आपने आयत ठीक नहीं पढ़ी, हदीस सही बयान नहीं की या मिस्टेक हो गई है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, शर्माना नहीं है। हाँ, फौरन बताएं कि मेरी गलती है, मैंने गलत पढ़ा था, सही ये है, क्योंकि लोगों की शर्म की वजह से कहीं कयामत में मारना पड़े। हमने देखा कि अमीर अहले सुन्नत फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी इतनी बड़ी हस्ती होते हुए बराए रास्त चैनल पर बताते हैं कि भाई फला मसले में गलती हुई थी, सही मसला ये है। इसमें कोई शर्म और आर नहीं होनी चाहिए चंद लोगों की शर्म उठाने के लिए कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ कहें ना कहें, अगर रब नाराज हो गया और गुनाहे जारिया हो गया, मैंने जायज को नाजायज कह दिया और नाजायज को जायज कह दिया, तो मेरे लिए तो अजाब का बाइस बन जाएगा। तो कभी भी जिंदगी में अगर कोई आपको बता भी देना कि यार आपसे ये गलत मसला बयान हो गया है, आपने ये मिस्टेक की है, तो उसमें एक मिनट ना लगाएं और फौरन उसको ठीक करें और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक से राबते में रहें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलती रहेंगी। एक और प्यारी हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक शख्स नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज की या रसूलल्लाह अफजल अमल कौन सा है? फरमाया तुम पर लाजिम है हाल मुर्तहिल, यानी मंजिल पर पहुंचकर फिर सफर शुरू कर देने वाले बन जाओ। अर्ज किया हुजूर ये मुर्तहिल क्या है, ये कैसा काम बंदा है? तो फरमाया जो कुरान पाक को इब्तिदा से पढ़े और इख्तिताम पे पहुंचे और फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दे, फिर खत्म हो फिर पढ़ना शुरू कर दे, यानी मंजिल पर पहुंचकर फिर सफर शुरू कर दे, तो सुबहान अल्लाह इसको मुर्तहिल कहते हैं और ये अफजल अमल है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको ज़ौक व शौक के साथ तिलावत कुरान का शौक नसीब फरमाए। कुरान तिलावत के साथ साथ अंडरस्टैंड करना भी शुरू करें। दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से आपको तफसीर कुरान मिल जाएगी, तफसीर कुरान सिरातुल जिनान, बहुत आसान उर्दू में ये तफसीर मौजूद है। इसकी वेबसाइट पर किताब डाउनलोड के लिए भी अवेलेबल है dawatislami.net पर। सिरातुल जिनान के नाम से तफसीर कुरान की एप्लीकेशन मौजूद है, फ्री ऑफ चार्ज आप उस पर पढ़ सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ आपके लिए एक सहूलत और दे दी गई है, उसकी ऑडियो भी रिलीज़ कर दी गई है, आप रोज़ाना ट्रैवल के दौरान भी कुछ तिलावत तफसीर सुनते रहें तो इंशाल्लाह आप रोज़ाना कुरान के साथ इन्वॉल्व रहेंगे। अल्लाह करे कि हम सही तरीके से कुरान पढ़ने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।